أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العظيم. کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، ہم سب کی غفلت اور جہالت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ پہ سارا جانے ہیں. بزرگان محترم، اس وقت ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم ہمارے ملک کی آزادی کے دن کو منانے کے لیے اس وقت یہاں جمع ہوئے ہیں. اس وقت میرا فرض یہ بنتا ہے کہ یہ ملک غلام کیسے بنا اور فریڈم فائٹ آزادی کی لڑائی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا تھوڑا سا اتہاس میں آپ کے سامنے عرض کروں. تقریباً 150 سال کی خون اور جگر کی قربانی کا اتہاس میں اس وقت اپنے ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کے بیان میں آپ کے سامنے ہرگز میں بیان کر سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی داستان ہے، بہت بڑی درد بھری داستانیں ہیں، اور بے شمار جنگ آزادی کے ان اکابرین کے قربانیاں ہیں. کوشش کروں گا کہ کچھ حصہ آپ کے سامنے عرض کروں. سب سے پہلے 1498 کے اندر پورتگل کو واسکو دی گاما کی سرپرستی کے اندر ایک ویپاریوں کا، ملاحوں کا ایک جہاز ہندوستان آیا، اور یورپ سے ایشیا میں آنے والا سب سے پہلا یہ پانی کا جہاز تھا. ہندوستان کے اندر اس وقت جو کیرالا کی راجدھانی ہے کالیکٹ، اس کے قریب کے دریا کے کنارے کے اوپر واسکو دی گاما نے اور اس کے ساتھیوں نے سب سے پہلے پڑاؤ ڈالا. یہ آئے تھے ویپار کی نیت سے، تجارت کی نیت سے، کاروبار کی نیت سے، لیکن انہوں نے ہندوستان کے اندر آ کر کے صرف ویپار نہیں کیا بلکہ پورتگل سے عیسائیت کو، کرسچینالٹی کو ساتھ میں لے کر کے آئے تھے، اور انہوں نے ویپار کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر عیسائی دھرم کو پھیلانا شروع کیا، اور بہت سی جگہوں کے اوپر چرچ بنائے. چرچ کے ساتھ ساتھ انہوں نے سونی کی کوٹ، عیسائی کوٹیں انہوں نے چالو کی، اور دھیرے دھیرے انہوں نے عیسائی مذہب کو یہاں پر پھیلانا شروع کیا. ایک طرف بزنس بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، اور اپنا عیسائی دھرم بھی یہاں پھیلاتے تھے. جو ان کے راستے میں آتا تھا اس کو وہ قتل کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے. نہ جانے کتنے ہمارے ہندوستانی بھائی پورتگل سے آئے ہوئے واسکو دی گاما کی ٹیم کے لوگوں کے ہاتھ سے مارے گئے. ان کی ایک بہت بڑی داستان ہے. افسوس ہے کہ ہمارا اتہاس اس سے خاموش اور چپ ہے. واسکو دی گاما اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے ہندوستان کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا. یہ خبر جب یورپ کے دوسرے انگریزوں کو پہنچی تو ہندوستان کو سونے کی چڑیا ہے، یہ تو کمانے کی جگہ ہے. تو تقریباً 1601 میں 1601 کے اندر، 1601 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد پڑی. ابھی بھی آج ہم کو معلوم نہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کیوں قائم ہوئی تھی، اس کا بھی تھوڑا سا اتہاس سن لیجیے. انگلینڈ کے 101 ویپاریوں نے 30,000 پاؤنڈ جمع کیے، اور 30,000 پاؤنڈ جمع کر کے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی. ایسٹ انڈیا کمپنی جو 101 ویپاریوں نے قائم کی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایشین ملکوں کے ساتھ، خصوصاً ہمارے ہندوستان کے ساتھ، ویپار اور تجارت کے تعلقات کو بڑھانا. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی 1601 میں قائم ہوئی اور ان کا جہاز ہندوستان آیا، اور یہاں آ کر کے انہوں نے دھیرے دھیرے تجارت اور بزنس شروع کیا. یہاں سے سونا، چاندی اور ہمارے ہندوستان کی ڈھاکہ کی ململ، اس کو چوری کر کر کے یہاں سے انہوں نے لے جانا شروع کیا. उस जमाने के अंदर ढाका में, ढाका उस वक्त हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, उस वक्त ढाका में ऐसी मलमल मचती थी कि 100 मीटर मलमल का कपड़ा अगर कोई आदमी उसकी घड़ी करे, उसके लपेट ले, तो एक रोटी के अंदर भी उसको छुपा सकते थे, इतनी बारीक मलमल होती थी। और रोम और पेरिस और लंदन के अंदर उसको उस जमाने की औरतें, क्रिश्चियन औरतें उसको पहना करती थी। उन्होंने यहाँ आकर के तिजारत शुरू की और तिजारत के साथ साथ धीरे धीरे वो अपना लश्कर भी लाने लगे, अपने कदम यहाँ जमाने शुरू किए। उस जमाने में उन्होंने जो कोठियाँ बनाई थी अपने लश्करों को छुपाने के लिए, उसमें से कुछ कोठियों की यादगार अगर देखनी हो तो सूरत जब हम जाते हैं तो सूरत तापी नदी के किनारे के ऊपर आज तक उन कोठियों की कुछ यादगार मौजूद है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने कदम यहाँ जमाए और फिर इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के देशी नवाब लोग, राजा महाराजा लोग आपस के अंदर लड़ने झगड़ने के अंदर लगे हुए हैं। तो कहते हैं ना कि घर के अंदर जो है तो एक आदमी गद्दार निकले तो वही पूरे घर को बर्बाद करने का जरिया बन जाता है। तो घर के हमारे देशी नवाब महाराजा राजा लोग आपस की लड़ाई में थे, उसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और राजा महाराजाओं को आपस में लड़ा लड़ा करके उसने कमजोर किया। आज ये पॉलिसी काश के हमारे हिंदुस्तान के इस वक्त के तमाम नागरिक लोग समझे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ आकर के यहाँ के देशवासियों को आपस में लड़ा करके कमजोर करके अपना कब्जा यहाँ जमाया था। आज वही पॉलिसी अंग्रेज लोग इस देश के अंदर अपना रहे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। फिर उन्होंने देखा कि अब यहाँ अपने कदम धीरे धीरे जमा रहे, लश्कर को ला रहे। सबसे पहले 1757 ईस्वी के अंदर प्लासी के मैदान के अंदर उन्होंने एक हिंदुस्तान के उस जमाने के बंगाल के बादशाह नवाब सिराजुद्दौला के साथ उन्होंने बाकायदा प्लासी के मैदान के अंदर जंग की और वीर साजिद जैसे कुछ गद्दार निकल रहा और उनकी गद्दारी की वजह से 1757 की जो जंग थी वो प्लासी के मैदान के अंदर नवाब सिराजुद्दौला हार गया। वीर जाफर साजिद और वीर कासिम ऐसे गद्दार निकले कि अल्लाह की तरफ से उनको कुदरती ऐसी सजा हुई कि इस जमाने के अंदर जो कैंसर की बीमारी है, एड्स की बीमारी है, उससे भी ज्यादा उनको खतरनाक बीमारी लगी। ऐसी ऐसी बीमारी उनको लगी कि बाद के अंदर ब्लड फबरा जैसे एकदम जहरीले नाग उनको बसाए जाते थे, फिर भी उनकी बीमारी कम नहीं होती थी। ऐसी खतरनाक ब्लैक कोबरा का जो जहर होता है, इससे भी ज्यादा खतरनाक जहर उनके बदन के अंदर फैल चुका था। ये अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में सजा दी थी गद्दारी करने के, और आखिरत की सजा अपनी जगह के ऊपर है। 1757 ईस्वी के अंदर प्लासी के मैदान के अंदर जब हार गए तो अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर सबसे पहले जो है अपनी हुकूमत जमाई। फिर इस हुकूमत को उन्होंने आगे बढ़ाया, यहाँ तक के बाजू में जो मैसूर की हुकूमत थी जहाँ सुल्तान टीपू शहीद वहाँ हुकूमत करते थे, सुल्तान टीपू शहीद के साथ उन्होंने लड़ाई शुरू की 1799 ईस्वी के अंदर। 1799 के अंदर सुरंगापट्टनम का मैदान आज भी मैसूर के बाजू के अंदर मौजूद है। उस सुरंगापट्टनम के मैदान के अंदर अंग्रेजों ने सुल्तान टीपू के साथ जो है जंग शुरू की। जब उस जंग के अंदर सुल्तान टीपू ने मुकाबला किया, ऐसा जबरदस्त मुकाबला किया, उस जमाने के अंदर दुनिया मिसाइल क्या चीज है वो जानती नहीं थी। मेरे पास इतिहास के पूरे सबूत है कि सुल्तान टीपू शहीद ने सबसे पहले सुरंगापट्टनम की लड़ाई के अंदर मिसाइल को इस्तेमाल किया था। उस वक्त अमेरिका और यूरोप, दुनिया का कोई देश मिसाइल क्या चीज होती है वो भी जानते नहीं थे। उस वक्त सबसे पहले मिसाइल की थियोरी इस्तेमाल करने वाले सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह तआला ने, उन्होंने अंग्रेजों के सामने 1799 वाली लड़ाई के अंदर जोरदार मुकाबला किया। उस मौके के ऊपर भी कुछ गद्दार लोग सामने आए और उन गद्दारों की वजह से सुल्तान टीपू शहीद को सुरंगापट्टनम के मैदान के अंदर हारना पड़ा, शिकस्त खानी पड़ी। जब हार गए 3 दिन तक उसकी उनकी लाश जमीन के ऊपर पड़ी रही, किसी अंग्रेज जनरल मेजर की हिम्मत नहीं हुई तो वो सुल्तान टीपू की लाश के करीब भी जाए। उनको ये खतरा था कि शायद सुल्तान टीपू अभी जिंदा है और हम करीब जाएंगे तो पता नहीं हमारा क्या असर होगा। 3 दिन खाल में गुजर गए और अंग्रेजों को यकीन हो गया कि आप सुल्तान टीपू यकीनन सही हो चुके हैं। तो जनरल हॉर्स जो अंग्रेजों का चीफ इन कमांडर था उस लड़ाई के अंदर, वो यूनियन जेट को लेकर के सुल्तान टीपू के लाश के करीब पहुंचा और उसने सुल्तान टीपू की सीने के ऊपर बैठ करके यूनियन जेट को जो है उसने लहराया और उस दिन उसने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सुल्तान टीपू कौन आदमी थे। जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद हुए उसी दिन जनरल हॉर्स ने ऐलान कर दिया था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। ये मैं आपको 1799 की बात कर रहा हूँ, 1799 की आपके सामने बात कर रहा हूँ। सुल्तान टीपू शहीद, मैं आपको बताऊँ, आपने टीपू सुल्तान टीपू शहीद की सीरियल शायद देखी होगी, उसके अंदर उनको बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है, उनको बिगैर बाबू का चेहरा बताया गया है, ये गलत है। सुल्तान टीपू शहीद अल्लाह के वली थे और कुतुब थे, शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने जमाने के कुतुब और अब्दाल के दर्जे के वली थे, वो खुद लिखते हैं मक्तूबात के अंदर कि सुल्तान टीपू शहीद अपने जमाने के कुतुबों के भी वली थे, सबसे बड़े वली और अवलिया अल्लाह में से थे सुल्तान टीपू शहीद। बल्कि इतना ही नहीं, सुल्तान टीपू शहीद वो इंसान थे, मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि बालिग होने के बाद कभी उनकी नमाज कज़ा नहीं हुई थी, वो सुल्तान टीपू शहीद थे, वो साहिब तरतीब आदमी थे, जिंदगी में एक नमाज भी उनकी कज़ा नहीं हुई थी, तहज्जुद गुजार आदमी थे। 1799 के अंदर सुल्तान टीपू की शहादत हुई, उनका वो जुमला, उनका वो सेंटेंस जो इतिहास के अंदर आज तक मौजूद है कि गीदर की तरह 100 साल की जिंदगी के मुकाबले के अंदर शेर की तरह एक घड़ी की जिंदगी ज्यादा अच्छी है, ये कहते हुए वो श्रीरंगपट्टनम के मैदान में शहीद हुए। सुल्तान टीपू की शहादत के बाद अंग्रेजों को हिम्मत बढ़ी और वो धीरे 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 आगे बढ़े और सबसे पहले 1800 ईस्वी के अंदर लॉर्ड लिप के कमांडरी के अंदर अंग्रेजों की फौज बंगाल और मैसूर से आगे बढ़ी दिल्ली की तरफ, तो चलो अब दिल्ली को हम लोग कब्जा करते हैं, और धीरे धीरे ये लोग दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। उस वक्त दिल्ली के अंदर मुगल सल्तनत अपनी कमजोरी की हालत के अंदर थी और मुगल बादशाह धीरे धीरे कमजोर होते हुए चले आ रहे थे। 1803 ईस्वी के अंदर 1803 के अंदर 1803 ईस्वी के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों का लश्कर दिल्ली पहुंचा और लश्कर दिल्ली पहुंचा तो उस वक्त मुगल बादशाह शाह आलम उस वक्त मौजूद थे, ये बहादुर शाह जफर से भी पहले शाह आलम उस वक्त मौजूद थे। शाह आलम को उन्होंने जबरदस्ती उन्होंने एक आपस के अंदर सुलहनामा लिखवाया। उस सुलहनामे के 3 जुमले इतिहास में आपने पढ़े होंगे कि खल्क खुदा की यानी पब्लिक अल्लाह की, मुल्क बादशाह का, और ऑर्डर एंड लॉ वो कंपनी बहादुर का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये उस वक्त उन्होंने नारा लगाया था। जिस दिन वो नारा उन्होंने लगवाया शाह आलम के पास, उस दिन यकीन हो गया था कि अब जो है लाल किले के अंदर मुगलों की हुकूमत खाली नाम की है और अब हकीकत के अंदर हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की हो चुकी है। ये 1803 का 1803 की बात मैं आपको बतला रहा हूँ, जब शाह आलम के पास जो है उन्होंने सुलहनामा लिखवाया था। उस वक्त दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े आलिम दीन थे जो हदीस शरीफ बैठ के पढ़ाया करते थे, जिस मस्जिद में बैठ के हदीस पढ़ाते थे आज तक उनकी वो मस्जिद दिल्ली के अंदर मौजूद है। उस मस्जिद में वो बैठने वाले, चटाई पर बैठने वाले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आज के इस मौके के ऊपर मैं दुआ करता हूँ हजरत वाला की कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। ये वो शख्स है कि जिस शख्स ने सबसे पहले आजादी की लड़ाई के लिए आवाज उठाई, इनसे पहले आजादी के लिए आवाज उठाने वाला कोई शख्स नहीं है। हमारा चैलेंज है कोई भी आदमी इतिहास की रोशनी के अंदर हमारे सामने प्रूफ करे कि 1808 से पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब के ऐलान से पहले किसी ने भी आजादी के लिए आवाज उठाई नहीं थी। 1808 ईस्वी के अंदर 1808 के अंदर सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब बहादुर दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया, जो फतवा अजीजिया के पेज नंबर 17 के ऊपर छपा हुआ मौजूद है। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब ने फतवा दिया कि हिंदुस्तान वालों, तुम कौन सी गफलत की नींद में सोए हुए हो, ये तुम्हारा मुल्क अंग्रेजों का हो चुका है, इसको अंग्रेजों से आजाद कराना हम सब का कौमी फरीजा है, हम सबका जो है अपनी मातृभूमि के साथ प्रेम का तकाजा है, हर एक की जिम्मेदारी है, तो वो इस मुल्क को आजाद कराने के पीछे लग जाए। ये फतवा 1808 1808 के अंदर सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। इसीलिए आज की इस मजलिस के अंदर जंगे आजादी के फाउंडर, आजादी की लड़ाई की इब्तिदा करने वाले अगर किसी शख्स को हम तय कर सकते हैं तो वो हजरत अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है। इनसे पहले किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, ये सबसे पहले इंसान गुजरे हैं। हजरत अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक रिश्तेदार हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह तो उनसे ये कहा कि नवाब होलकर और उनकी फौज के अंदर जाकर के मिलो और मिल करके अंग्रेजों के सामने मुकाबला करो। चुनांचे होलकर जो राजा थे उनकी फौज के अंदर और अमीर खान जो उनके मुंह वाले भाई थे उन दोनों की फौज के अंदर शरीक होने के लिए अब्दुल अजीज साहब ने हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भेजा कि जाओ और नवाब होलकर के साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करो। उन्होंने 7 बरस तक मुसलसल होलकर के साथ मिल करके अंग्रेजों के सामने लड़ाई की। 7 बरस की लड़ाई के बाद जब नवाब होलकर ने अंग्रेजों के साथ सुलह की तैयारी की तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मेरी जमीन मेरा दिल ये गवारा नहीं करता कि हम अंग्रेजों के साथ सुलह कर ले। इसलिए सैयद अहमद शहीद ने होलकर का लश्कर छोड़ करके दोबारा दिल्ली आ गए और हजरत अब्दुल अजीज साहब से मुलाकात की। हजरत अब्दुल अजीज साहब ने फरमाया कि जब होलकर बादशाह सुलह कर रहे तो अब तुम अपनी अलग फौज बनाओ और अलग फौज बना करके अंग्रेजों के सामने लड़ाई की तैयारी करो। हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने और हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 1818 में 1818 के अंदर 1818 के अंदर बाकायदा उन्होंने फौज तैयार की और पूरे मुल्क का देश के खोने खोने का उन्होंने सफर किया और पूरे देश के अंदर लोगों को तैयार किया कि हमें अंग्रेजों के सामने लड़ाई करनी है और अंग्रेजों के सामने हमें उठना है और बाकायदा उन्होंने लड़ाइयाँ शुरू की और उनकी लड़ाई मुसलसल जारी रही 1824 तक 1824 तक। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने सबसे पहला फतवा दिया था वो पैसे भी देते रहे, हथियार भी बेचते रहे और साथ साथ में खाना पीना भी भेजते रहे। बराबर 1824 तक हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब इसके जो है सर सेनापति थे। 1824 के अंदर हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब का इंतकाल हो गया तो फिर हजरत शाह मोहम्मद इसहाक साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कमान अपने हाथ के अंदर संभाली। यहाँ तक के 1831 के अंदर 1831 के अंदर 1831 के अंदर हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बालाकोट जो पंजाब के अंदर एक जगह है उस मैदान के अंदर अपने 200 साथियों के साथ शहीद हुए और उन 200 साथियों के साथ उनकी कब्र बालाकोट के मैदान के अंदर आज तक मौजूद है और वहाँ उन्होंने शहादत का जाम किया और 200 साथियों के साथ उनकी कब्र बालाकोट के मैदान के अंदर बनी। ये बाकायदा 200 वो साथी थे जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के खातिर सबसे पहले अपनी जान की कुर्बानी दी। ये हजरत सैयद अहमद शहीद हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे जिन्होंने 1831 के अंदर 1831 के अंदर बालाकोट के मैदान के अंदर इस मुल्क की आजादी के खातिर इन्होंने कुर्बानी दी है। उसके बाद 1831 के बाद एलमाए सादिकपुर जो पटना बिहार के अंदर जो वहाँ की राजधानी है पटना उसके करीब में सादिकपुर है वहाँ के एलमा ने बाकायदे एक लश्कर बनाया और उन्होंने 1831 से 1846 1846 तक तकरीबन 80,000 आदमियों की फौज के साथ अंग्रेजों के साथ बराबर मुकाबला जारी रखा। ये 1831 से लेकर 1846 तक की दास्तान है तो जिसमें उलमाए सादिकपुर और मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाह अलैह उनके साथियों ने 80,000 के लश्कर के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया है। उसके बाद हुआ ऐसा कि अंग्रेजों की फौज धीरे धीरे दिल्ली के ऊपर बराबर अपना कब्जा जमा रही थी और पूरे मुल्क के अंदर भी उनका कब्जा दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। इसी दरमियान अंग्रेजों की तरफ से एक कमबख्ती सामने आई। वो कमबख्ती ये सामने आई कि इन्होंने 4 खतरनाक काम किए। अंग्रेजों ने पहला काम ये किया कि उनकी फौज के अंदर जो मिलिट्री के रास्ते रोटी पकती थी उस रोटी का जो आटा होता है उस लोट के अंदर उन्होंने सुअर और गाय की हड्डी का पाउडर फौजियों के लिए जो रोटी पकती थी उसके अंदर आटे में उन्होंने मिलावट चालू की। दूसरा काम अंग्रेजों ने यह किया कि जो घी आता था उस घी के अंदर उन्होंने सूअर की हराम चर्बी को उसके अंदर मिलाना चालू किया। और तीसरा काम ये किया कि कुओं के अंदर गाय और सूअर का गोश्त डाला और कुओं का पानी नापाक करके फौजियों को और मिलिट्री को कहा कि तुमको इसी कुओं के अंदर से पानी पीना है। और चौथा काम ये किया कि जो कारतूस उन्होंने बनवाई उसके ऊपर उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी लगाई और कंपल्सरी ये करार दिया कि कोई भी सोल्जर कोई भी सिपाही अपनी कारतूस को खोले तो अपने मुंह से खोले ताकि हिंदुओं की लागनी इस तरीके से दिखाएगी कि वो गाय की चर्बी वाली कारतूस को खोले और मुसलमान फौजियों की लागनी इस तरीके से दिखाएगी कि वो सूअर की चर्बी वाली कारतूस को खोले। ये चार किस्म के काम उस वक्त अंग्रेजों ने किए जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर गजब और गुस्से की लहर फैल गई और बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया। और उसी के नतीजे के अंदर 1857 के अंदर 1857 के अंदर जंग गदर हुई जिसको हम विप्लव कहते हैं, अंग्रेज इसको गदर कहते हैं, बगावत कहते हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि हमारे हिंदुस्तान वासियों की तरफ से बहुत बड़ी सशस्त्र जंग थी जो अंग्रेजों के खिलाफ उठाई गई थी। 1857 के अप्रैल के महीने के अंदर मंगल पांडे को फांसी दी गई जिनके नाम के ऊपर अब फिल्म भी बन चुकी है उनकी हिस्ट्री के ऊपर। अगर जो उसके अंदर जो मैंने स्टोरी करी है पेपर के अंदर उससे ये मालूम होता है कि सही इतिहास उसके अंदर रज्जू नहीं किया गया है। उसके अंदर भी इतिहास को रज्जू करने के अंदर बहुत गड़बड़ी की गई है। 10 मई 1857 के अंदर जो है ये विप्लव शुरू हुआ और अफसोस से विप्लव करने वाले हमारे सिपाहियों के पास कोई अच्छा सेनापति नहीं था जो इनको अच्छी तरीके से संभाल सके। इसलिए उस जमाने के अंदर तकरीबन 20 सितंबर 1857 के अंदर ये विप्लव हमारा नाकाम हुआ और लाल किले के ऊपर से हमारा तिरंगा झंडा उतार करके बाकायदा वहाँ यूनियन जैक यानी इंग्लैंड का झंडा लहरा दिया गया। ये तारीख थी 20 सितंबर 1857 की तो जिस दिन तिरंगा झंडा उतार करके वहाँ बाकायदा तौर पर यूनियन जैक को लहरा दिया गया, बहादुर शाह को जफर को पकड़ा गया और पकड़ करके उनको कैद किया गया और उनके जो शहजादे मिले उन शहजादों को यानी प्रिंस को बादशाह के बेटों को पकड़ के कत्ल किया गया और कत्ल करके सिर्फ उनके सर जो खून के अंदर भरे हुए थे उस खुंचे के अंदर रखे गए और रख करके उसके ऊपर बेहतरीन कपड़ा ओढ़ाया गया। और सुबह सुबह नाश्ते के अंदर जब नाश्ते का खुंचा बहादुर शाह जफर के पास अंग्रेज सिपाही लेकर के पहुंचे तो नाश्ते का खुंचा बाद में गया, पहले वो खुंचा गया जिसके अंदर बहादुर शाह जफर के बेटों की खोपड़ियां रखी हुई थी खून से भरी हुई और उसके ऊपर शानदार कपड़ा ओढ़ाया हुआ था। बहादुर शाह जफर ये समझे कि अंदर नाश्ता रखा होगा, जब कपड़ा उठाया तो देखा कि अपने 3 नौजवान लड़कों के सर रखे हुए हैं खून से भरे हुए। तो बहादुर शाह जफर की आंख में आंसू नहीं आए बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये तैमूरी शहजादों की शान है, ये मुगल बेटों की शान है कि वो अपने बड़ों के साथ लाल खोपड़ी के साथ आते हैं, गुलाम बनकर के वो भी आते, वो मुल्क के लिए जान दे सकते हैं लेकिन जो है अंग्रेजों के गुलाम नहीं बन सकते। बहुत अच्छा हुआ ये शहीद हो गए लेकिन गुलाम नहीं बने। खुशी के मारे बहादुर शाह जफर ने जो है नारा लगाया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके फिर रंगीन की जेल में ले गए और उसी जमाने का उनका वो शेर मशहूर है, कितना बदनसीब है तू ये जफर, कितना बदनसीब है तू ये जफर, दो गज जमीन मिल सकी कोए यार में। बहादुर शाह जफर को वहाँ रंगीन की जेल में ले गए और जिंदगी के आखिरी दिन बहादुर शाह जफर ने जो है वहीं पर गुजारे, वहीं पर इंतकाल हुआ और बहादुर शाह जफर को रंगीन की जेल के अंदर दफन किया गया और आज तक रंगीन की जेल के अंदर उनकी खबर मौजूद है। जिस वक्त 1830 के बाद 1930 के बाद एक मरतबा हमारे हिंदुस्तान के आजादी के बाद लीडरों को जिसमें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे उनको भी रंगीन की जेल में अंग्रेजों ने बंद किया था। जवाहरलाल जी ने रंगीन की जेल के अंदर देखा कि हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह उनकी खबर तो यहाँ है रंगीन में, तो पंडित जी ने उसी वक्त के ऊपर दिल में नियत की थी और बहादुर शाह जफर की कब्र पर खड़े होकर कहा था ए बादशाह सलामत, जिस दिन देश आजाद होगा तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि तुम्हारी कब्र को रंगीन की जेल से निकाल करके मैं दिल्ली के लाल किले के अंदर लाकर के तुमको मैं दफन करूंगा। ये उन्होंने वहाँ प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने वहाँ अहद किया था। जब 1947 के अंदर देश आजाद हुआ पंडित जी देश के सबसे पहले वड़ा प्रधान बन गए तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा तो मैंने जेल में बैठे बैठे ये प्रतिज्ञा ली थी कि हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की लाश को मैं रंगून की जेल से निकाल करके लाल किले में लाकर के दफन करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट से एक आवाज पर पंडित जी की आवाज में लब्बैक कही। फिर जब ये मसला आया मौलाना आजाद इस वक्त जो है शिक्षा मंत्री थे कैबिनेट के और मुजाहिदुल मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान से हारी रहमतुल्लाह अलैह तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप पार्लियामेंट से ये कानून से पास करवा रहे कि बहादुर शाह जफर की लाश को लाना है लेकिन आप जरा मजहबी एतबार से फतवा भी मालूम कर लीजिए कि इस्लाम के अंदर ये जायज है कि नहीं है। चुनांचे पंडित जी ने खुद उस जमाने के अंदर दारुल देवबंद के मदरसा मजाहिदुल कारम की किताबों के अंदर मौजूद है। पटेल में ये लिखा गया कि जहाँ बहादुर शाह जफर की कबर है उसी जगह के ऊपर उनकी कबर को रहने दिया जाए। इस तरह कबर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सही और जायज नहीं है। पंडित जी ने उस फतवे का एहतराम किया और इस फैसले को उन्होंने वापस लिया कि वहीं रंगून के अंदर जो है बहादुर शाह जफर की जो है लाश रहेगी और वहीं पर उनको रखा जाएगा। 1857 के अंदर जब विप्लव नाकाम हुआ है तो अंग्रेजों ने वो जुलम किए है कि मैं उसको आपके सामने बयान नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे जुल्म अंग्रेजों ने किए हैं। चुनाव से पूरे दिल्ली के अंदर मेरठ से लेकर दिल्ली तक तमाम रास्तों के ऊपर जितने झाड़ थे हर झाड़ के ऊपर फांसी के माचड़े लटकाए और उस फांसी के माचड़े के ऊपर और दिल्ली के हर चौराहे के ऊपर दिल्ली के चांदनी चौक के ऊपर सब जगह फांसी के माचड़े लटकाए गए और 1857 के विप्लव के जितने भी मुजाहिदीन थे हर एक को पकड़ पकड़ के लाते थे हाथी के ऊपर बिठाते थे और बिठा करके उनके गले में संदा डालते थे और हाथी को दौड़ा देते थे। बेचारा वो शुरूर ऊपर लटक करके तड़प तड़प करके अपनी जान दे देता था और वहीं पर वो कुर्बान हो जाता था। मैं नहीं कहता हूँ, एक अंग्रेज राइटर के हवाले से कहता हूँ, लेक्चर का नाम है एडवर्ड टेंशन। उसने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि हम अंग्रेजों ने उस वक्त के ऊपर दिल्ली के अंदर और मेरठ के अंदर जो मजालिम किए हैं उसकी दास्तान नहीं बयान कर सकता। 27,000 मुसलमान आलिमों को और मुफ्तियों को हमने फांसी के ऊपर लटकाया है। ये एडवर्ड टेंशन खुद अपने हाथ से लिखता है। और आगे चलकर के मैं आपको बतलाऊँ, मेरा नाम गुप्ता एक राइटर है, उन्होंने 1857 के विप्लव का इतिहास लिखा है। मेरा नाम गुप्ता खुद अपने हाथ से लिखते हैं। मैं इतिहास से एक सबूत आपको दे रहा हूँ कि 5,00,000 मुसलमानों को दिल्ली के अंदर फांसी की सजा दी गई थी। ये खुद गुप्ता जी ने लिखा है कि 5,00,000 मुसलमानों को 1857 के अंदर दिल्ली के अंदर फांसी दी गई थी। और मैं आपको क्या क्या दास्तानें सुनाऊं, चुनांचे लाशों को लटका करके रखा जाता था, उसके नीचे भी नहीं उतारा जाता था और बहुत से मुसलमानों को पकड़ के उनको बांध देते थे, बांध करके उनका मरे भी नहीं और तड़प तड़प करके वो अपना वक्त जो है गुजारे। दो दो दिन चार चार दिन छह दिन उसका वक्त गुजर जाता था। एक इंग्लिश लेडी लिखती है, आप लोग लंदन जाते हैं तो सिर्फ जो है लंदन ब्रिज मत देखिए, वहाँ पर इंडिया लाइब्रेरी भी मौजूद है। इंडिया लाइब्रेरी के अंदर अंग्रेजों ने जितने जुल्म किए उसके सारे दस्तावेज वहाँ मौजूद है। उन दस्तावेजों को जाकर के आप पढ़िए इंडिया लाइब्रेरी के अंदर लंदन सिटी के अंदर। एक अंग्रेज लेडी ने लिखा है, उस लेडी ने ये लिखा है कि मैं दिल्ली के अंदर शाम को अपने हस्बैंड के साथ कभी कभी घूमने के लिए निकलती थी। जब फिरने के लिए मैं अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर के जाती थी और रिवॉल्वर इसलिए लेकर के जाती थी ताकि मुसलमान आलिमों के ऊपर मैं रहम करूं, उनके ऊपर मैं मेहरबानी करूं। ये लेडी लिखती है। फिर ये लेडी ये लिखती है कि भविष्य के अंदर मेरा इतिहास पढ़ने वालों को सवाल पैदा होगा कि रिवॉल्वर से रहम कैसे होता है, रिवॉल्वर से मेहरबानी कैसे होती है। इसलिए मैं खुद इसका जवाब लिख देती हूँ कि मैं इसलिए रिवॉल्वर लेकर के जाती थी कि दिल्ली के लाल किले के सामने और इंडिया गेट के सामने बेशुमार मुसलमान आलिमों को पकड़ करके बांधा हुआ होता, उनके पेट के अंदर पीतल डाला हुआ होता, उनके ऊपर जख्म डाले होते, वो बेचारे तड़पते हुए होते थे और दो दो चार चार दिन से तड़पते होते थे। मैं रिवॉल्वर इसलिए लेकर के जाती थी ताकि गोली मार करके बेचारे को खत्म कर दो, ताकि वो तड़पने की तकलीफ से उसको छुटकारा मिल जाए।
इस तरीके से जो है हम अंग्रेजों ने जुल्म किया है कि अंग्रेज लॉबी ने लिखा है और इंडिया लाइब्रेरी के लंदन के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, आप इसको जाकर के देख सकते हैं। बहुत से उलमाए किराम को पकड़ करके बांधा जाता था और उनको तोप के साथ बांधा जाता था और तोप के गोले के साथ उनको उड़ाया जाता था। बेचारों की एक एक बोटियां उड़ करके जो है खत्म हो जाती थी। ऐसे 5 लाख आदमियों को 1857 के विद्रोह के नतीजे के अंदर 5 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया, कुर्बानी दी गई। पूरे मुल्क के अंदर सन्नाटा छा गया और पूरा मुल्क खामोश हो गया। 10 बरस तक किसी की हिम्मत नहीं हुई तो अंग्रेजों के सामने आंख उठा करके देखे। आज जिस डार्लिन बेगन को बदनाम किया जाता है, बेगन के जिस मदरसे को बदनाम किया जाता है, काश के लोग ट्रेडिशन में होता तो इसकी हिस्ट्री में आपके सामने जिक्र करता। 1857 के इस विप्लव की नाकामी के बाद जब पूरे देश के लोग मायूस हो चुके थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेजों के सामने नजर उठा करके भी देखे। 10 बरस गुजरने के बाद 1867 के अंदर बेगन की सरजमीन के ऊपर हमारे सारे बुजुर्गान दीन हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोथी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मिलजुल करके बेगन के मदरसे की बुनियाद डाली। और बेगन के मदरसे की बुनियाद किसने डाली थी? आज भी बेगन के बंधारण के अंदर, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि इस मदरसे की स्थापना इसलिए हो रही है ताकि इस मुल्क को अंग्रेजों के हाथ से छुड़ाया जाए, अंग्रेजों के हाथ से आजाद कराया जाए और अंग्रेजों के जुल्म से इस मुल्क को आजाद कराना है। इसके लिए हमने इस मदरसे की बुनियाद और पाया रखा है। तो डार्लिन बेगन, उसका फाउंडेशन, उसकी स्थापना अंग्रेजों के जुल्म से इस मुल्क को आजाद कराने के रास्ते रखी गई थी। बुजुर्गान महतरम, मैं कौन कौन सी दास्तानों को आपके सामने जिक्र करूं, बहुत जो है मुझे वक्त दिया गया था उससे बहुत आगे मैंने अपनी बात को बढ़ा दिया है। मैं आपको और क्या जिक्र करूं, 1867 में बेगन का मदरसा कायम हुआ, उसके बाद डार्लिन बेगन के फर्स्ट स्टूडेंट जिनका नाम मौलाना महमूद हसन था, बाद में चल करके उनको लकब सफल हिंद का मिला। उन्होंने माल्टा की काली कोठरी के अंदर जेल की सजा भुगती। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने एक सर्वर चलाई थी, उस सर्वर के नतीजे के अंदर उनको जेल की सजा हुई। और 1920 के अंदर हजरत सफलिंद रहमतुल्लाह अलैह, माल्टा ये यूरोप में एक टापू है और इंग्लैंड के करीब के अंदर है, वहाँ 3 बरस 1 महीना हजरत सफलिंद रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथियों के साथ जेल के अंदर बंद रखा गया था। बहुत गोरे आदमी थे। इंतकाल जब हुआ तो इंतकाल के वक्त गुसल के लिए जब उनके कपड़े उतारे तो गुसल देने वाले रो पड़े कि हजरत इतने गोरे और पूरी काली और लाल थी, बहुत काली और लाल थी, तो हजरत की चीज काली और लाल क्यों है? पूछे किसी को तो उनके जेल के साथी मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और पूछा कि हजरत की चीज काली और लाल क्यों है? तो हजरत मदनी की आंख में आंसू आ गए और कहने लगे, एक राज था, एक भेद था, एक सीक्रेट था, आज मुझे खोलना पड़ रहा है। और वो ये है कि माल्टा के 3 साल की जेल के अंदर अंग्रेज रोजाना सुबह के अंदर 3 बजे हजरत सफल हिंद को जेल में से निकालते थे, बर्फ के ऊपर सिलाते थे और बर्फ पर उल्टा सिला करके हजरत की पीठ के ऊपर सलियों को लाल करके और लोखंड को गर्म करके हजरत की पीठ को इतना मारते थे कि जिसकी वजह से हजरत की पीठ लाल और काली कर गई थी। और इसी हाल के अंदर उनका पूरा बदन नहीं कर कमजोर हो गया था। जब इंतकाल का वक्त करीब आया, लोगों ने पूछा कि हजरत आप बेगम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट स्टूडेंट हैं, हम ये चाहते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट स्टूडेंट हैं, आपको जगह बतलाओ जहां आपकी आलिशान हम कब्र बनाए। हजरत ने फरमाया कि तुम मेरी आलिशान कब्र बनाने की बात करते हो और मेरी कब्र पर कब्र पर गुंबद बनाने की बात करते हो, मुझे पूछो मैं क्या चाहता हूँ? हजरत सलीम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अंग्रेजों के सामने इसी कमजोरी के साथ मैदान में उतरूं और अंग्रेजों के सामने लड़ते लड़ते मैं मैदान के अंदर शहीद हो जाऊं, यहाँ तक कि अंग्रेज मेरी लाश के ऊपर अपना गुस्सा निकाले और मेरी लाश को अपनी तलवार के जरिए से टुकड़े टुकड़े कर डाले और मेरी लाश को कुत्ते आकर के खा जाए और मुझे दफन करने की जरूरत न पड़े, मुझे कफन पहनाने की जरूरत न पड़े। और कल कयामत के मैदान के अंदर जब सब लोग अपनी कब्र से निकल के आएंगे तो मेरा बदन कुत्ते के बदन से निकल करके आएगा और मैं कहूंगा मैदान कयामत में अल्लाह से हिंदुस्तान की आजादी के रास्ते मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की थी। ये हमारे अकाबरीन और बुजुर्गानुदीन के जज्बात थे। मैं सैकड़ों वाकयात इस वक्त छोड़ रहा हूँ और सारी की चीजों का हश्र कर रहा हूँ। इस वक्त मैं फिर से एक बार याद करता हूँ सैयद शेख़ुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को। मौलाना मदनी कौन थे? टुक में उनका तारीफ में करवा दूँ। आजाद भारत के अंदर जो उस जमाने का सबसे बड़ा हमारे देश का अवार्ड था पद्मश्री, जैसे आज भारत रत्न है, उस वक्त सबसे बड़ा हमारा भारत देश का अवार्ड था पद्मश्री। तो उस वक्त हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने ठहराव पास किया कि देश का सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री अगर किसी इंसान को दिया जाए, सबसे पहला अवार्ड अगर किसी को दिया जाए तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को दिया जाए। सब ने एक जबान ठहराव पास किया था। मौलाना मदनी को जब पद्मश्री अवार्ड देने के लिए बुलाया गया तो फरमा दिया, हमने देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी थी वो अवार्ड लेने के लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ी थी, हमें अवार्ड की जरूरत नहीं है, हमने तो देश स्वयं के अंदर लड़ाई लड़ी थी। ये कहकर के हजरत ने उस अवार्ड को भी कबूल नहीं फरमाया और उस अवार्ड को भी हजरत ने रद्द फरमा दिया। ये थे हमारे वो अकाबरीन जिन्होंने अल्लाह के वास्ते और देश प्रेम के खातिर अपनी कुर्बानियां दी। जब हम बाइबली में बैठे हैं तो मैं जरा अपनी 1928 की जो सरवर हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाई थी उसका भी कुछ थोड़ा सा जिक्र कर दो। 1928 के अंदर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे बाबोली से एक सरोवर चलाई खेड़ों के साथ लेकर के, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस सरोवर के अंदर अभी कोई जान नहीं थे। लोग उनके साथ मिलते थे अलग होते थे, मिलते थे अलग होते थे। इस वक्त मैं बड़ी खुशी से ये बात आपको कह सकता हूँ और बहुत इज्जत और बहुत खुश के साथ ये बात कह सकता हूँ, मेरा ताल्लुक इस यूनिवर्सिटी के साथ है, इस मदरसे के साथ है और जिस मदरसे के इस वक्त प्रिंसिपल आज की हमारे इस मजलिस के अंदर मौजूद है। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस वक्त सरोवर चलाई तो वल्लभ भाई पटेल ने फतवा पूछा हमारे बाबोली के खेड़ों ने, फतवा पूछा बाबोली मदरसे से कि हमने जो ये अंग्रेजों के विरुद्ध में सरोवर चलाई है, तो उस वक्त हमारे बाबोली मदरसे के मुफ्ती हकीकुर रहमान साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा एक फतवा लिखा और वल्लभ भाई पटेल की सरोवर को सपोर्ट किया। जब ये फतवा बाबोली के दारुल इफ्ता से आया तो उसके बाद वल्लभ भाई पटेल की सरोवर के अंदर ताकत आई और लोग उस सरोवर के अंदर ज्यादा से ज्यादा शामिल हुए। दांडी यात्रा के अंदर भी गांधी जी को सपोर्ट करने वाला हमारा मदरसा था। मैं आज इस इज्जत के साथ कह सकता हूँ कि गुजरात की जमीन के ऊपर धार्मिक संस्थाओं ने अगर किसी ने आजादी की सरोवर को सपोर्ट किया है तो इसके अंदर हमारा नाम अकेला मिलता है, तो इसके अंदर हमारा शरीक नहीं है। बहरहाल इस मुल्क की आजादी के खातिर हमने बेशुमार कुर्बानियां दी है और अफसोस इस बात का है कि 1939 के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान और भागले की बात आई। इस वक्त मैं आपको दर्द दिल से कहता हूँ भागले हमने मांगे नहीं थे, पाकिस्तान हमने मांगा नहीं था, पाकिस्तान के भागले को हमने सपोर्ट नहीं किया था और न पाकिस्तान की मांगने हमने रखी थी। बहुत साफ साफ कहता हूँ अफसोस से मैं आपको एक इसलिए पेश करता कि आज जिनको हम आजादी के बड़े बड़े लड़ैया लोग कहते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप शर्म के मारे सर झुका लेंगे, वो भी भागला करवाने के सबसे बड़े हामी थे और उन्हीं लोगों ने भागले करवाए थे। हम मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा नहीं था और न उसके चाहने वाले थे। हमारे बदन के अंदर तो वो खून बह रहा है कि हम तो भागले के विरोधी लोग थे कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए और भारत को टुकड़े ही नहीं होने चाहिए और एक अखंड भारत रहना चाहिए, हम तो ये चाहते थे। पर अल्लाह करे वो दिन आ जाए जब ये जर्मनी एक हो सकते हैं तो तीन हिंदुस्तान के टुकड़े एक हो सकते हैं, हम तो इम्पॉसिबल नहीं है और अखंड भारत दोबारा बन सकता है। बहरहाल इस मुल्क की आजादी की कुर्बानियों के अंदर हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। आज के इस मुबारक मौके पर हम तमाम मुजाहिदीन आजादी के खिराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह उन सब की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। 1947 में आजादी के बाद जब गांधी जी ने ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर सबसे पहली तकरीर की, अगर ऑल इंडिया रेडियो वो प्रूफ आपसे बोले तो उसमें वो जुमले मौजूद हैं कि आजादी लोग मुझे कह रहे हैं कि मुसलमानों को कहो पाकिस्तान चले जाए। गांधी जी ने कहा कि मैं मुसलमानों को कैसे कहूँ कि पाकिस्तान चले जाए, ये गांधी जी के लफ्ज में आपसे बतला रहा हूँ। तो लोग मुझे दबाव कर रहे हैं कि आप मुसलमानों को कहो कि पाकिस्तान चले जाओ। गांधी जी ने ऑल इंडिया रेडियो पर तकरीर करते हुए पूरे देश को कहा था कि मैं कैसे मुसलमानों को कहूँ कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, इसलिए कि पूरा देश सोया हुआ था और सबसे पहले मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने सबको जगाया आजादी की लड़ाई के वास्ते। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कुर्बानी दी, मौलाना हिज्जुर रहमान सिहारवी ने कुर्बानी दी। मैं किस जबान से इनको कहो कि तुम देश छोड़ के चले जाओ। इस देश की आजादी के लिए इन्होंने 10-10 सालों की, 15-15 सालों की, 20-20 सालों की जेल की सजाएं भुगती है। मैं उनको हरगिज नहीं कह सकता कि तुम देश छोड़ करके चले जाओ। मेरे बुजुर्गो, ये सब हमारी आजादी की तारीख है, जरूरत है कि हम इसको पढ़े। आज हम स्टडी नहीं करते, हम सब कुछ करते हैं, अपना इतिहास नहीं करते। जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है उसको सफाई हस्ती से मिटाना आसान हो जाता है, और जो कौम अपने इतिहास को करती है दुनिया की कोई ताकत उसको दुनिया से खत्म नहीं कर सकती। जरूरत है कि हमारी नस्ल, हमारी पीढ़ी हमारे इतिहास को जाने। मैं अपने हाईस्कूल परिवार के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा जिससे मुझे कुछ मौका मिला कि आजादी के अंदर जो है मैं हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी को पेश कर सकूं। क्योंकि हमारी पीढ़ी को यही समझती है कि जो है फला फला लोगों ने, महात्मा गांधी जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने देश को आजाद करवाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने वाले हम लोग हैं। आए कोई मेरे पास इतिहास के सबूत लेकर के कि जब गांधी जी अफ्रीका से आए तो उनको महात्मा का लकब तो मौलाना अब्दुल हई बारी सिरंगी महल्ली लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। ये महात्मा का शब्द लगाने वाले मौलाना अब्दुल हई बारी है, हमने उनको महात्मा बनाया है। और गांधी जी को कोई जानता नहीं था। सबसे पहले जमीयत उलमाए हिंद ने अपने फंड के जरिए से गांधी जी को पूरे देश में सफर करवाया और जो लोगों को कहा कि ये भी एक लीडर है और उनकी लीडरी भी तस्लीम करो, हम ही उनको आगे लाने वाले थे। आज जो गांधी चौक कहलाती है, जो बेकलमी टोपी जो खादी की मिलती है, जो गांधी चौक होती है, आपने कभी देखा कि गांधी जी ने जिंदगी में टोपी पहनी है? कभी आपने देखा? कोई फोटो है आपके पास एक भी कि जिसके अंदर गांधी जी के सर के ऊपर टोपी है? फिर ये गांधी चौक कैसे बन गई? इसका इतिहास भी मैं आपको बतला दूं। ये हकीम अजमल खां मरहूम की टोपी है और हकीम अजमल खां के साथ एक मरतबा एक आजादी के जलसे में हकीम अजमल खां ने एक मिनट के लिए गांधी जी के सर पर वो टोपी रखी। इस दिन से उस टोपी का नाम गांधी टोपी बना, वरना ये हकीकत में हकीम अजमल खां मरहूम की टोपी है। खैर, ऐसी ऐसी तो इतिहास की बहुत सारी दास्तानें हैं। आज से कोई मौका होता मैं आपको सारा तफसील से सुनाता। अल्लाह ताला जो है हम सबको हमारे बुजुर्गों के साथ सही रास्ता अता फरमाए। मुल्क से हमें मोहब्बत है, देश से हमें मोहब्बत रखनी चाहिए और देश प्रेम जो है हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि मुश्किल वतन मुश्किल ईमान, देश प्रेम ईमान का आधा हिस्सा है। जो सबका मुसलमान होगा वो कभी देश का गद्दार हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान देश से गद्दारी करते हैं उसका ईमान भी कमजोर है और उसके इस्लाम के अंदर भी गद्दारी है। पक्का मुसलमान कभी देश का गद्दार हो नहीं सकता। देश कैसे तरक्की करे इसकी हमें फिक्र करने की जरूरत है। 1947 में देश को हमने आजाद तो करा लिया, लेकिन आज 2005 के अंदर देश दोबारा मल्टीनेशनल कंपनियों की गुलामी के अंदर जा रहा है। बहुत अफसोस से मैं ये बात कह रहा हूँ। इसलिए हमें दोबारा देश की आजादी के लिए शायद लड़ाई लड़नी पड़े, ऐसे हालात आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम बुजुर्गों की कदर को नूर से मुनव्वर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
Thank you.